रुद्रा ने कहा, अरे हाँ, मैं भूल गया था, मैं तुम्हें यहाँ लेने ही आया था। रुद्रा पीछे हो गया। रूही और अहाना ने मानसी को पकड़ा और दोनों उसके साइड हो गईं। रुद्रा पहले ही जल्दी आगे निकल गया था। आशु मंडप में बैठा सीढ़ियों की ओर देख रहा था, जहां से मानसी सबके साथ आ रही थी। लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में मानसी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बिल्कुल कम ज्वेलरी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और अपनी नज़रें नीचे किए हुए थीं। आशु की तो नज़रें मानसी से नहीं हट रही थीं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रूही ने मानसी को आशु के बगल में बिठा दिया और खुद आकर रुद्रा के बगल में खड़ी हो गई। रूही सभी मंत्रों और रस्मों को बड़े ध्यान से देख रही थी। ये सब देखते हुए उसे खुद की शादी की याद आ गई। गत में रूही ने बहुत प्यारा लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था और एक अलग से दुपट्टा सर पर डाला हुआ था। उसके बालों का जोड़ा था। रूही बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू बह रहे थे और होठों पर मुस्कुराहट कहीं दूर दूर तक नहीं थी। रूही का अपनी शादी पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो तो एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। रुद्रा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे उसके हाथों की कुछ चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में घुस गई थीं। रुद्रा के हाथ पर रूही की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। जब रूही ने रुद्रा के हाथ को ज्यादा कस के पकड़ा, तो रुद्रा ने रूही की ओर देखा, जो एकटक सामने मंडप को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। रुद्रा ने कहा, रूही रूही, क्या हुआ, इतना मत रो। रुद्रा ने रूही को अपने हाथों से हिलाया तो रूही जैसे होश में आई। रूही ने कहा, क्या हुआ? रुद्रा ने कहा, तुम रो रही हो, क्या हुआ? रूही ने उदास होकर कहा, कुछ नहीं। इतना बोल रूही ने अपना हाथ रुद्रा से छुड़ाया और अहाना के पास चली गई। रुद्रा को रूही का ऐसे जाना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और शादी की रस्में देखने लगा। पंडित जी ने कहा, जजमान, कन्या का कन्यादान कौन करेगा, वो आगे आ जाइए। रुद्रा ने जैसे ही सुना, रूही का हाथ पकड़कर आगे आ गया और मंडप में चला गया। रूही और रुद्रा ने थोड़ी देर में मानसी का कन्यादान किया और गठबंधन भी कर दिया। सब लोग ध्यान से देख रहे थे। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया था। एक, पंडित जी ने कहा, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्याह वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। मानसी ने आशु की ओर देखकर कहा, आप मुझे पहला वचन दीजिए, अगर आप कभी तीर्थयात्रा करने जाएं तो हमें भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप कोई व्रत, उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करें तो आज की भांति ही उसे बानी और बिठाएं। फिर कन्या वर से पूछती है कि अगर उसे ये स्वीकार है तो वो उनके वामांग में आना स्वीकार करती है। आशु ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम मेरे वामांग में आ सकती हो। दो, पंडित जी ने कहा, पूज्यो यथा स्व पितरौ ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याह वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। मानसी ने कहा, दूसरा वचन दीजिए, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आशु ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम मेरे वामांग में आ सकती हो। तीन, पंडित जी ने कहा, जीवनम अवस्था त्रये पालनम कुर्यात् वामांगम याति तदा त्वदीयम प्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। मानसी ने कहा, मेरा तीसरा वचन, आप मुझे वचन दें कि जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में वर उसका पालन करता रहे। अगर वो इसे स्वीकार करता है तो कन्या उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। आशु ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम मेरे वामांग में आ सकती हो। चार, पंडित जी ने कहा, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु खतिज्ञाम यदि कातम कुर्याह वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। मानसी ने कहा, अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। आशु ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम मेरे वामांग में आ सकती हो। पाँच, पंडित जी ने कहा, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मणीये व्यये मामापि मंत्रये था वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमंत्र कन्या। मानसी ने कहा, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आशु ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम मेरे वामांग में आ सकती हो। छह, पंडित जी ने कहा, नमे पमानम सविधे सखीना द्योतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्वेत वामांग मायामी तदात्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। मानसी ने कहा कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आशु ने कहा, मैं वचन देता हूँ तुम मेरे वामांग में आ सकती हो। सात, पंडित जी ने कहा, परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष्य स्नेहम सदाचेन मयी कांत कुर्याह वामांग मायामी तदात्वदीयम भ्रूते वचः सप्तमंत्र कन्या। मानसी ने कहा, आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आशु ने कहा, मैं वचन देता हूँ तुम मेरे वामांग में आ सकती हो।